तारीख 10 दिसंबर दिन गुरुवार। नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। 7 सालों बाद भारत और पाकिस्तान सभी मामलों पर बातचीत के लिए तैयार।
आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे।
सुनेंगे भारत में क्या कह रहे हैं जानकार और दूसरे राजनीतिक दल। चेन्नई के मस्जिद ने खोला सभी समुदायों के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने दरवाजे और न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम विरोधी बयान के खिलाफ रैली। होगी अखबारों की समीक्षा भी और खबरें खेल जगत से भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। भारत और पाकिस्तान व्यापक द्विपक्षीय वार्ता को दोबारा शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बुधवार को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने इस बारे में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। संयुक्त वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि मुंबई हमलों के मामले में जारी अदालती कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। द्विपक्षीय वार्ता 7 साल पहले मुंबई हमलों के बाद स्थगित कर दी गई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान अमीर और विकासशील देशों के बीच तीखे मतभेद उभर कर सामने आए हैं। वहीं सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधि समझौता मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने सम्मेलन की सफलता को लेकर उम्मीद जताई है और कहा है कि शुक्रवार को सम्मेलन की समाप्ति से पहले सदस्य देश इस पर एकमत हो जाएंगे। वहीं विकासशील देशों का आरोप है कि जो प्रस्ताव सम्मेलन में लाए गए हैं वो विकसित देशों को जिम्मेदारियों से बचाते हैं। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि दक्षिणी प्रांत कंधार के हवाई अड्डे पर तालिबान के हमले में सुरक्षा कर्मियों, हमलावरों और आम नागरिकों समेत कुल 46 लोग मारे गए हैं। मंगलवार को कंधार हवाई अड्डे पर हमले के बाद हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। इस मामले में अफगान सैन्य मुख्यालय, नेटो का ठिकाना और कई अन्य दफ्तर हैं। सेना के कमांडर दाऊद शाह वफादार ने पूरी कार्रवाई का ब्यौरा दिया। अफगान सैनिकों की कार्रवाई के दौरान 14 तालिबान लड़ाके मारे गए। 14 तालिबान लड़ाके थे, हमने सभी को मार गिराया। 4 हमलावरों ने खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया जबकि बाकी अफगान सैनिकों की गोली से मारे गए। इस दौरान एक अफगान सैनिक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। इसके अलावा 9 आम नागरिकों की मौत हुई है और 9 लोग घायल हैं। ये थे अफगान सेना के कमांडर दाऊद शाह वफादार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मैक्सिको में स्वास्थ्य अधिकारियों ने डेंगू बुखार के लिए बने दुनिया के पहले टीके के प्रयोग की स्वीकृति दे दी है। डेंगू एक भयानक बुखार है जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है। इस टीके का निर्माण फ्रांस की दवा कंपनी सनोफी ने पिछले 20 साल के शोध के बाद किया है। इस टीके से शुरुआती दौर में मेक्सिको के करीब 40,000 लोगों का इलाज हो सकेगा। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम मैगजीन ने इस चुनाव के लिए प्रवासी संकट और ग्रीस के कर्ज संकट के समाधान में मर्केल की भूमिका को आधार बनाया है। इस साल की सूची में दूसरा स्थान इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी को दिया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी हिंदी की पहली रेडियो सभा, आप सुन रहे हैं फैसल मोहम्मद अली से, स्वागत है आपका। भारत और पाकिस्तान ने एक साझा बयान में कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच मौजूद सभी मामलों पर वो बातचीत करेंगे। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने इस्लामाबाद गई भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान किया गया है। दोनों मुल्कों के बीच साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद से बातचीत का सिलसिला रुक गया था। भारत इन हमलों के लिए पाकिस्तान में मौजूद तत्वों को जिम्मेदार मानता है। पूरा ब्यौरा सुने पंकज प्रदर्शी से।
आपसी संबंधों में जमी बर्फ के पिघलने का पूरा संकेत देते हुए भारत और पाकिस्तान एक बार फिर समग्र बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इस बातचीत में जम्मू और कश्मीर में शांति और सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल रहेगा। पेरिस में 10 दिन पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की संक्षिप्त मुलाकात के नतीजे में पहले बैंकॉक में सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई और अब इस्लामाबाद की यात्रा पर गई भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समग्र बातचीत का ऐलान कर दिया।
कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स वहाँ की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। मैं चूंकि संसद में कहकर आई हूँ कि कल वहाँ बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से हुई मुलाकात के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि वो मुंबई हमलों की सुनवाई को जल्दी से नतीजों पर पहुंचाने के लिए कदम उठा रहा है। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि दोनों देशों के विदेश सचिव आपस में मिलकर इस बातचीत की रूपरेखा और समय तय करेंगे। पेरिस में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद दोनों देश जितनी तेजी से आगे बढ़े हैं उससे कई लोगों को हैरानी हो रही है। भारत में विपक्षी दल कांग्रेस ने पूछा है कि सीमा पर स्थितियों में सुधार हुए बगैर केंद्र सरकार पाकिस्तान से बातचीत पर क्यों तैयार हो गई? कांग्रेस नेता शकील अहमद,
इस मोदी साहब के समय में 1000 बार से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हो चुका, 40,000 लोग हमारे सीमा को छोड़ के जिनका घर था बॉर्डर पे पाकिस्तान के वो सुरक्षित जगहों पे 2 बार प्लान कर चुके हैं और हमारे आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं। और इस माहौल में पाकिस्तान ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि उसने आतंकवादियों को डिस्करेज करना शुरू किया है या डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की जमीन लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस समय में बात करने का हम लोगों को कोई वजह समझ में नहीं आती है।
अगले साल सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार अमरीकी दबाव में आकर बिना संसद को विश्वास में लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते पर बढ़ रही है।
पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने के बीच में ही प्रधानमंत्री पेरिस गए थे और वहाँ उनकी नवाज शरीफ से बात हुई, ये आया कि एकाएक बात हो गई। उसके बाद तुरंत एनएसए के और फॉरेन मिनिस्टर के और फॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान विजिट की, तो प्रधानमंत्री को और सरकार को बताना चाहिए कि वो किन हालात में और किन मजबूरियों से। इस बीच में हम लोगों ने सुना कि अमेरिका की तरफ से कई बार दबाव डाला गया, ओबामा साहब ने कई बार बात की, मुद्दे अलग अलग रहे लेकिन अंदर खाने ये बात होती रही कि शायद उन पर दबाव डाला गया मोदी साहब पर, जिसकी वजह से वो मिल रहे हैं। तो ये बात यकीनी हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी हम जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से देश जाने इस बात को।
पाकिस्तान को लेकर भारत पर कथनी और करनी में फर्क करने की बात विरोधियों के साथ ही सुरक्षा मामलों के जानकार भी करते रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से बीते हफ्तों में हालात बदले हैं उसे लेकर स्थितियों का विश्लेषण उनके लिए शायद टेढ़ी खीर होगी।
ये थे पंकज प्रदर्शी। 10 दिन पहले पेरिस में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की अचानक हुई मुलाकात के बाद जितनी तेजी से दोनों देश बातचीत की राह पर आगे बढ़ रहे हैं उस पर कुछ हलकों में हैरानी जताई जा रही है। न सिर्फ मुंबई हमलों के बाद दोनों मुल्कों के बीच बातचीत रुकी पड़ी थी बल्कि भारत में मौजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कड़े कदम उठाने का वायदा किया था। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार सुशांत सरीन से हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने पूछा कि वो बातचीत के ऐलान को किस तौर पे देखते हैं।
देखिए, बात तो समझ में नहीं आ रही। अगर तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसको पढ़ा जाए तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में मुलाकात हुई वो बहुत कारगर साबित हुई है और बहुत सक्सेसफुल है टेररिज्म के मुद्दों को लेकर के, लेकिन उससे क्या निष्कर्ष निकला था, उस मुलाकात में आपको क्या आश्वासन मिले थे, और ऐसे आश्वासन जिनको लिखित में नहीं दिया गया हो उनको आप कैसे फुलफिल करवाएंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक अश्योरेंस के ऊपर या जिसे एक पोस्ट डेटेड चेक बोला जाएगा उसके ऊपर हमने पाकिस्तान की सारी मांगे जो हैं कॉम्पोजिट डायलॉग को लेकर के वो मान ली हैं। अब ये हो सकता है कि जो अभी भारत सरकार है उसने ये सोचा हो कि भाई हम जो कुछ कर चुके हैं वो अब हमसे सस्टेन नहीं हो सकता, वो हम दुनिया भर में बेच नहीं पा रहे, और बेहतर यही होगा कि अब अपने घुटने टेकें और वापस चले जाएं मेज पर। लेकिन ये पहले से सोचना चाहिए, क्योंकि इसके जो संकेत जाते हैं दूसरे पक्ष को वो ये हैं कि अगर हिंदुस्तान को के ऊपर आप दबाव बना के रखिए और उनको आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए उनके साथ, तो सूनर रादर देन लेटर ये वापस आ ही जाएंगे।
पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से बार बार ये कहा कि वो बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि वो उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जिक्र कर ही देते हैं, उनके उस बयान को काउंटर करने के लिए भारत भी ये दिखाना चाह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार, आप क्या कहेंगे?
ये पाकिस्तान का कहना कि वो बिना शर्त के बातचीत करना चाहता है, तो जैसे ही आप कॉम्पोजिट डायलॉग के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली शर्तें तो लग गई, आपने डिसाइड कर लिया कि आप इन शर्तों के ऊपर बात करेंगे या इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ये तो जरूर कहता था कि हम बिना शर्त बातचीत चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर का मुद्दा सरे फहरिस्त होगा, ठीक है, टेररिज्म का भी मुद्दा है। ये मनमोहन सिंह ने जब कॉम्पोजिट डायलॉग को कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग बना करके वापस मेज पे गए थे तो यही बीजेपी वाले थे जिन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया था, अब यही बात इन्होंने की है। दूसरी चीज ये कि जब सियाचिन, सिरक्रीक और इन सब मुद्दों की बात आती है तो अब मेरे ख्याल हमारे को ज्यादा अचंभा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह के समरसॉल्ट और यूटर्न्स मोदी जी की सरकार ले रही है पाकिस्तान को लेकर के, मेरे ख्याल ये सियाचिन और सिरक्रीक पर भी समझौता करेंगे और उन टर्म्स पे करेंगे जिन पे शायद आज तक भारत कभी रजामंद नहीं हुआ था।
हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में तीनों देशों ने मिलकर बातचीत की, चर्चा हुई, और ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा है उस पर कुछ चर्चा हुई है, वहाँ कोई उम्मीद देख रहे हैं हम?
अगर जब तक जमीन पर कुछ आपको नजर ना आए तब उम्मीद बांध लेना किसी एक एक बड़े एक फलसफे के ऊपर, मैं तो उस बात में यकीन नहीं करता। जमीनी स्तर पर जो हालात हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो तालिबान का नेतृत्व है उसको अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है, सारा का सारा वहाँ की डायरेक्शन जो है उनके अटैक्स की वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं और हम उस चीज को मान रहे हैं तो फिर बात समझ में आने के बाहर है।
भारत में खलका इसे घुटने टेकने के तौर पर देख रहा है। सुशांत सरीन से बातचीत कर रहे थे निखिल रंजन। सुशांत सरीन विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी संस्था बताई जाती है। और अब एक रिपोर्ट चेन्नई से। बाढ़ से बेहाल चेन्नई के पुडुपेट इलाके की तरफ की एक मस्जिद खूब चर्चा में है और इसकी तारीफें भी हो रही हैं। मस्जिद सलाम ने अपने दरवाजे बाढ़ पीड़ितों के लिए खोल दिए हैं और सैकड़ों हिंदुओं, ईसाइयों, दूसरे मजहब के लोगों को मदद पहुंचा हुई है। लोगों को जगह देने के लिए मस्जिद में नमाज पहली मंजिल पर अदा की जा रही है। नीचे की मंजिल राहत सामग्री और लोगों के लिए खाली कर दी गई है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने चेन्नई की मस्जिद के इमाम और दूसरे लोगों से बातचीत की।
मैं इस वक्त चेन्नई के बीचों बीच एक मस्जिद सलाम में हूँ। यहाँ पर अय्या स्वामी स्ट्रीट कहते हैं इस इलाके को, और ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है बाढ़ में और बारिश के बाद से। हमारे साथ अभी इमाम साहब हैं मस्जिद के। इमाम साहब, ये बताएं कि आपका नाम बताएं और ये बताएं जब ये मामला हुआ था, जब ये बाढ़ का हुआ तो उस वक्त क्या मंजर था यहाँ पर?
हम उर्दू में बोल सकते हैं?
जी आप बिल्कुल बताएं उर्दू में। इमाम साहब,
मुसलमान है, गैर मुसलमान है, सबको हम मदद करें, जो इसमें नुकसान हुआ है पूरे को हम मदद करें, किसी को हम
क्या हुआ, क्या था उस दिन, उस रोज क्या हुआ?
पूरा पानी आ गया,
पूरा पानी आया,
पानी आ गया।
ये मस्जिद है, इसके चारों तरफ
से
लोग रहते हैं,
इसके चारों की तरफ से मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पूरे लोग है, पूरे लोग, हम पूरे लोग को मदद करें, हम पूरे लोग को, हम इसमें जात नहीं देखे, पूरे लोग को हम मदद करें।
किस तरह से मदद?
वेनेस्डे के दिन 25 नवंबर को फजर का नमाज हम लोग का 5:30 बजे खत्म, 6:45 बजे करीब हम लोग बाहर निकले
नमाज
के बाद में। उससे हम लोग को पता नहीं चला, तो बाहर जाने के बाद मंजर देखे कि सब आदमी मतलब चिल्ला रहे हैं हमें बचा, हमने यहाँ से बचाओ बचाओ करके। तो इसमें से हम लोग मस्जिद के जितने भी कर्मचारी है, सेक्रेटरी साहब है, इमाम है, सब हम लोग दौड़ के 5 आदमी के देखते स्ट्रीट में लंबा स्ट्रीट है और पूरा पानी भरा हुआ। हम लोग जाकर देखे सब आदमी चिल्ला रहे, ऊपर से चिल्ला रहे बचाओ बचाओ करके, पानी मतलब यहाँ तक कमर तक आ गया। तो उसके बाद फिर हम लोग फिर मस्जिद के सब पूरा कर्मचारी सबको बुला करके पानी क्या हुआ वो सब पूरा
करंट चला गया है, बिजली चला गया है,
बिजली
ताल्लुकात नहीं। वो बोर्ड में जाकर हमारे आदमी लोग यहाँ से बोर्ड में जाकर वो लोग को दूध वो लोग को क्या क्या जरूरत है, पानी उड़ा नाश्ता पूरा दो दिन यहाँ से हम सप्लाई करें।
आपने सप्लाई किया और आपने अभी तक कर रहे हैं आपकी मस्जिद में, आपकी मस्जिद में तमाम हिंदुओं ने भी शरण ली, लोग आए
10% खाली मुसलमान है, खाली 10% ही मुसलमान है, 90% जो है क्रिश्चियन और हिंदू है।
आप लोगों ने मदद की, क्या ये चेन्नई शहर का एक जज्बा है, क्या एक चेन्नई शहर का कल्चर है की आप सब एक दूसरे की मदद करते हैं?
जरूर, ये चेन्नई शहर का ये कल्चर है कि मुसलमान गैर मुसलमान सब भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं जैसा देखते हैं, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं है।
क्या लगता है आपको आगे आने वाले दिनों में कितना समय लगेगा ये पूरा जो इस इलाके में नुकसान पहुंचा है, और किस तरह की मदद आप लोग और करना चाहते हैं?
हमने जितना होता है कि हम भाई सब हम भाई, भाई लोग हैं, हमारे कमेटी लोग हैं, पूरा मदद करते हैं, बाहर से कलेक्शन करते हैं, हमारे जमात से कलेक्शन करते
हैं।
उसके बाद आप दूसरी और चीजें दे रहे हैं,
खाना पका दिया हम, खाना सप्लाई करे।
किस तरह का खाना बनाया आप लोगों ने, क्या क्या सामान दिया?
वेजिटेबल ही बनाए,
सुबह का नाश्ता में ब्रेड दूध वगैरह देते,
इमली का खाना, इमली का खाना बनाए थे,
लेमन राइस
जी बनाए थे। अभी तक काम चल लोगे, अभी तक देखते ना काम चल लोगे, मद्रास पूरा हमारा जमात जो है काम कर लोगे, अभी तक फिलहाल
जी। बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब बात जलवायु परिवर्तन की। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर जारी कॉन्फ्रेंस में अमीर और विकासशील देशों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए हैं। दूसरी तरफ नए समझौते के मसौदे पर काम जारी है, सम्मेलन शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। विकासशील देशों का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बावजूद अमीर मुल्क इसकी भरपाई करने को तैयार नहीं, जबकि सभी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसी दौरान बीबीसी संवाददाता नवीन सिंह खड़का ने भारत के पर्यावरण सचिव अशोक लवासा से बात की।
फाइनेंसिंग को आप इस ढंग से देखिए कि जो UNFCCC कन्वेंशन है और जो इससे पहले उस एग्रीमेंट पेरिस से पहले जो हुई है, उसके अंदर एक उत्तरदायित्व विकसित देशों का है। उन अनेक उत्तरदायित्वों में से एक उत्तरदायित्व उनका फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो हमारा ये कहना है कि जिन देशों का एक उत्तरदायित्व था या एक जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी निभाना अनिवार्य है। उस जिम्मेदारी निभाने के अलावा अगर कोई भी देश क्लाइमेट चेंज एक्शन फाइनेंस के लिए अपना योगदान देता है, तो वो एक वॉलंटरी बेसिस पे, वो एक ऑब्लिगेशन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो इस इतना सा ही मतभेद है, इससे ज़्यादा कोई और मतभेद।
पश्चिमा देश या विकसित देश तो ये कह रहे हैं कि वो पैसे दे ही रहे हैं, आंकड़े भी दे रहे हैं।
नहीं, अगर आप आंकड़े देखें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में तो अभी तक जो प्लेजेज हैं उसका आंकड़ा 10.2 बिलियन का है, लेकिन वो सिर्फ प्लेजेज है, असली पैसा कितना आया है वो देखना है। इसके अलावा भी अगर आप देखें ग्रीन क्लाइमेट फंड से जो केवल शायद 8 प्रोजेक्ट अभी तक सैंक्शन हुए हैं, इन 8 प्रोजेक्ट्स का जो अमाउंट है वो $168 मिलियन है, और $168 मिलियन भी केवल सैंक्शन किए हैं, डिसबर्स नहीं किए हैं।
तो मान लीजिए रिसोर्सेज में बात नहीं बनी तो डील नहीं होगी ना?
नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि विकसित देश भी ये चाहते हैं कि पेरिस में एक अच्छी एग्रीमेंट हो, और हमने जो अब तक सुना है, हमको ये कहीं पर ये विकसित देश ने ये नहीं कहा कि हम अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए नहीं तैयार।
मान लीजिए ये अगर हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि बाकी के जो मुद्दे थे, जैसे कि एमिशन के मुद्दे या फिर टारगेट्स के मुद्दे, उन सब में बात बन गई है?
मैं समझता हूँ कि बहुत सक्रिय रूप से बातें हो रही है और काफ़ी चीज़ों के अंदर बातचीत आगे बढ़ी है, सहमति हुई है, और माहौल एक ऐसा है कि सब लोग चाहते हैं कि एक सहमति पूर्ण और प्रबल एक करार हो।
लेकिन भारत कोई लीगली बाइंडिंग सहमति के पक्ष में है? भारत
देखिए, लीगली बाइंडिंग या एग्रीमेंट विद लीगल फोर्स, ये सब एक लीगल टेक्निकल शब्द हैं, लेकिन सबके हित में ये होगा कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो जो लोगों को बाइंड करे कि जो हम यहाँ पर एग्री करके जा रहे हैं, जो हमने INDCs दिए हैं, जो हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट दिए हैं, जो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कमिटमेंट दिए हैं, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए।
ये थे भारत के पर्यावरण सचिव अशोक लवासा, उनसे बात कर रहे थे नवीन सिंह खड़का। और अब चलते हैं अमरीका। अमरीका के न्यूयॉर्क में बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम विरोधी बयान को लेकर एक प्रदर्शन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के धनी व्यापारी हैं और वहां होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हाल में एक बयान में कहा था कि अमरीका में आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए मुसलमानों के अमरीका में आने पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस बयान का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
न्यूयॉर्क के रहने वाले मशहूर धनी व्यवसायी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद अमेरिका में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। अब ट्रंप के अपने शहर न्यूयॉर्क में भी उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में एक विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। कैलिफोर्निया में हुई हालिया गोलीबारी की घटना के सिलसिले में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। बुधवार को न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के बाहर शहर काउंसिल की स्पीकर मेलिसा मार्क विवरितो की अगुवाई में विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरु और शहर के नेता समेत करीब 200 लोग ट्रंप का विरोध करने पहुंचे। सिटी स्पीकर मेलिसा मार्क विवरितो ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुसलमानों के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, वो नस्ल के आधार पर भेदभाव है, इस्लाम के प्रति नफरत है। उनके इस प्रकार के भय फैलाने वाले बयान से नफरत फैल रही है। हम मुसलमानों को और सारे न्यूयॉर्क वासियों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि लोगों को परेशान करने की और नस्ल भेदी हमलों की हमारे इस सुंदर शहर में कोई जगह नहीं है। सिटी स्पीकर ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल एक यहूदी अमरीकी अलेक्जेंडर रैपोपोर्ट का कहना था कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। मैं भी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हूँ और जो दाढ़ी रखे वो क्या मुसलमान हो जाता है? मैं भी मुसलमान हूँ। कोई ये कैसे तय कर सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का मानने वाला है और बस उसी के कारण उसे निशाना बनाया जाए? ये बताता है कि यह सिर्फ नफरत पर आधारित है। ये थे एक यहूदी अमरीकी व्यक्ति अलेक्जेंडर रैपोपोर्ट के शब्द। उधर व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना की है, लेकिन ट्रंप ने अपने बयान को वापस नहीं लिया है और उनका कहना है कि अमरीकियों की सुरक्षा अहम मुद्दा है और यह भी कि उनके बयान के जरिए किसी धर्म को निशाना बनाना मकसद नहीं है। और रिपब्लिकन पार्टी में 65% लोग इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हैं कि अमरीका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अमरीका भर में कैलिफोर्निया के सैन बर्नाडिनो में हाल के आतंकी हमले के बाद से लोगों में खौफ बढ़ा है और सुरक्षा को लेकर लोगों में परेशानी भी बढ़ी है। उधर मुसलमानों में भी हमलों के बाद निशाना बनाए जाने का भी डर बढ़ा है। न्यूयॉर्क में रहने वाली एक मुस्लिम महिला रोबीना न्यास कहती हैं,
बेइंतहा खौफ, अनसर्टेनिटी, सामने का पता नहीं, आप काम पे जा रहे हैं और आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि आपको इस चीज़ का असर नहीं हो रहा, और रोज़ होता है, आप उठते हैं, आप सोचते हैं। इस वक्त ये कैफियत है कि मैं समझती हूँ कोई मुसलमान अमेरिका में सुबह उठ के सबसे पहले ये नहीं सोचता कि मैं मुसलमान हूँ, आज मेरा दिन कैसे गुजरेगा।
कैलिफोर्निया के हमलों में एक मुस्लिम दंपत्ति सैयद रिजवान फारूक और तफशीन मलिक ने गोलीबारी करके 14 लोगों को मार डाला था और 20 से अधिक लोग जख्मी भी हुए थे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब देखते हैं कि अखबारों में क्या छपा है। भारत के अखबार क्या कह रहे हैं? समीर आत्मज मिश्र, क्या वहाँ भी पाकिस्तान और भारत की बातचीत छाई हुई है?
बिल्कुल फैसल साहब, लगभग जितने भी अखबार मेरे सामने हैं सभी में प्रमुख खबर के तौर पर यही है, भारत और पाकिस्तान के
की वार्ता
जो है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नवाज शरीफ के साथ वार्ता हुई, तस्वीरें छपी हुई हैं और नवाज शरीफ और सुषमा स्वराज की, लगभग सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता दी है। 7 ईयर्स आफ्टर मुंबई अटैक्स, इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिज्यूम टॉक्स, लिखता है द हिंदू। डीरेल्ड, 3 ईयर्स इंडिया पाक टॉक्स बैक ऑन ट्रैक, ये हेडिंग है इंडियन एक्सप्रेस की। जनसत्ता की हेडिंग है, फिर हुई बातचीत की बात, भारत पाक ने किया समग्र वार्ता का ऐलान, आज संसद में बयान देंगी सुषमा स्वराज। उसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, कल संसद में जो नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा है। दैनिक भास्कर लिखता है कि ये पीएमओ का 100% सियासी बदला, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। हेराल्ड पर हंगामा, संसद में लगे नारे, मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। इस ये दूसरे अखबारों में भी प्रमुखता से ये खबर छपी हुई है। इसके अलावा जो खबर है जिसकी चर्चा अखबारों ने की है, मुंबई में कल दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की कुछ नीलामी की गई, लगभग सभी अखबारों ने उसको अलग अलग तरीके से दिया है और दैनिक भास्कर ने उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से लगाई है कि नीलामी में किसी ने दाऊद की गुंडई को जवाब देने के लिए रेस्तरां तो किसी ने देशभक्ति बताने के लिए कार खरीद ली। एक पत्रकार ने 3 गुना कीमत में रेस्तरां खरीदा और एक स्वामी ने 2 गुने दाम में कार खरीदी। इनसे के अलावा
पत्रकार दोनों
जी हाँ, और दिल्ली में जो ऑड और इवन नंबर की सम और विषम नंबर की कारों को चलाने का मामला है वो खबर भी अखबारों में छाई हुई है। हिंदुस्तान लिखता है महिलाओं को नंबर नियम से छूट देगी सरकार, तो कुछ अखबारों में इस और कुछ दूसरे अखबारों में भी इस पे चर्चा की गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार ने नेपाल में जो संकट चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से उस पर संपादकीय लिखा है कहीं दूर न हो जाए हमसे नेपाल। अखबार लिखता है कि भारत सरकार कह रही है कि इस सीमाबंदी से उसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन काठमांडू में इसे मानने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर नेपाल के भीतर भारत को खलनायक की भूमिका में देखा जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए समीर आत्मज मिश्र, और अब वक्त हो चला है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की ताजा रैंकिंग में अजिंक्य रहाणे भारतीय बैट्समैन में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए चौथे क्रिकेट टेस्ट में रहाणे ने दोनों पारियों में शतक लगाए थे, तो ये शतक अजिंक्य रहाणे के लिए कितना स्पेशल है?
हर एक शतक आपके लिए स्पेशल होता है, जहाँ पर भी आप खेलते हो सेंचुरी बनाते हो और आपकी टीम को उसका फायदा होता है। तो मेरे ख्याल से मैं यही मानता हूँ कि आपके 100 से अगर टीम को फायदा होता है तो वो शतक बहुत स्पेशल होता है। आप किसी भी कंडीशन में बनाओ, चाहे वो इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, तो ज़रूर ये सेंचुरी भी, क्योंकि पहली सेंचुरी मेरी इंडिया में।
दिल्ली टेस्ट से पहले रहाणे की रैंकिंग 26वीं थी लेकिन अब वो टेस्ट रैंकिंग में 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जो उनकी करियर की सबसे अच्छी रैंकिंग है। और अब बात करते हैं भारत के वनडे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जो 8 साल में अपना पहला घरेलू मैच आज खेलेंगे जब झारखंड की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप बी के मैच में जम्मू कश्मीर से भिड़ेगी। धोनी ने आखिरी बार 2007 में झारखंड के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेला था। ये उस समय की बात है जब राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम बांग्लादेश और श्रीलंका के हाथों हारकर ICC क्रिकेट विश्व कप से बाहर हो गई थी। धोनी भारतीय तेज गेंदबाज वरुण एरॉन की कप्तानी में खेलेंगे। आगे आने वाली T20 और वनडे के लिए कैप्टन धोनी के पास तैयारी का ये पूरा मौका होगा। भारत में ऑस्ट्रेलिया का वनडे दौरा, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज, एशिया कप और ICC T20 वर्ल्ड कप खेलना जो है। दूसरी तरफ शिखर धवन की बात करते हैं तो भारत के सलामी बैट्समैन शिखर धवन की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे क्रिकेट टेस्ट के दौरान संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए शिकायत की गई है। मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में धवन की ऑफ स्पिन गेंदों की वैधता पर संदेह जताया गया है। ICC ने मीडिया विज्ञप्ति में बताया है कि रिपोर्ट भारतीय टीम प्रबंधन को सौंप दी गई है। और फुटबॉल में वोल्सबर्ग से 3-2 से मिली हार के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग फुटबॉल से बाहर हो गई, जबकि जर्मनी की इस टीम ने PSV इंडोवन के साथ अंतिम 16 में एंट्री कर ली है। ग्रुप डी में मैनचेस्टर सिटी टॉप पर है। तो आज खेल समाचारों में इतना ही, नमस्कार।
कार्यक्रम लगभग अपने खात्मे की तरफ पहुंच चुका है लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। भारत और पाकिस्तान व्यापक द्विपक्षीय वार्ता को दोबारा शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान अमीर और विकासशील देशों के बीच तीखे मतभेद उभर कर सामने आए हैं। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि दक्षिणी प्रांत कंधार के हवाई अड्डे पर तालिबान के हमले में सुरक्षाकर्मियों, हमलावरों और आम नागरिकों समेत कुल 46 लोग मारे गए हैं। मेक्सिको में स्वास्थ्य अधिकारियों ने डेंगू बुखार के लिए बने दुनिया के पहले टीके के प्रयोग की स्वीकृति दे दी है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एक सरोगेट कुत्ते ने दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब पिल्लों को जन्म दिया है। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस प्रयोग की सफलता से कुत्तों की संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षित रखने और आनुवंशिक रोगों को ठीक करने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कुत्तों के भ्रूणों को मानव रोगों के अध्ययन में भी प्रयोग किया जा सकता है। BBC समाचार।
इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्षवाला था राजेश चौहान ने। अगली मुलाकात विश्व भारती में 8 बजे, तब तक के लिए फैसल महमूद अली और पूरी टीम को दें इजाज़त। नमस्कार।